सानिध्य में हम आप सब लोग मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज इस मंगलमय महोत्सव में ठाकुर श्री राम लला का जन्मोत्सव हम सब ब्रजवासी मिलकर के मनाएंगे, जहां राम जी के रूप में साक्षात श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, श्री भरतलाल जी के रूप में श्री वरदराज भगवान विराज रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी के रूप में साक्षात श्री रामानुजाचार्य जी विराज रहे हैं, और श्री शत्रुघ्न जी के रूप में नन्हे से श्री बाल गोपाल। और वैसे आज के रूप को देख के महाराज जी चारों एक ही हैं, यही भाव प्रस्तुत होता है, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब उनके नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, लेकिन वैसे तो तत्व एक ही हैं, तो उसी रूप का दर्शन यहाँ हम सब करेंगे। और ब्रज के भाव से एक दो हमारी लाला की बधाई भी आज श्री रघुनाथ जी को श्रवण कराएंगे। खूब आनंद से आप सब लोग विराज रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके और थोड़े थोड़े दूर होकर के बैठे मंगलमय कथा का श्रवण करें। आज भी संत जनों के आगमन यहाँ होंगे। कथाक्रम आज जिस प्रकार महाराज जी की आज्ञा हुई कि कथा के विश्राम में राम जी का जन्मोत्सव होगा, समय की अनुकूलता देख करके फिर जितने भी संत यहाँ पधारेंगे उनके भी एक एक मिनट दो दो मिनट हम लोग आशीर्वचन श्रवण करेंगे। खूब प्रेम और भाव से आप लोग श्रवण करें। पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन विनती कि आप अपनी ओजस्वी वाणी से हम आप सब लोगों को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज जी। राजा रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री अवध धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, अखंड भारत वर्ष की जय, जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। हरिः ॐ। तच्छञ्जोराम् वृणीमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वम् जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तुद्विपदे सं चतुष्पदे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं। सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम्। अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्रातेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतमारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजं अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्चीरमितविशदैरंसुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरबरबरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणम् श्रीराधाकान्तस्मरणम् सन्तपूर्वाचार्यास्सहायाः सन्तपूर्वाचार्यास्सहायाः बोलिये श्रीसीतारामचन्द्रभगवान् की जय श्रीराधा कृष्ण भगवान की
जय
श्री हनुमान जी महाराज की
जय
श्री राम कथा महोत्सव की
जय
जय जय सीताराम। भगवान श्री सीताराम चंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें।
सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम
सीता राम सीता राम
भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की
जय।
जय जय सीताराम।
परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम चंद्र जी, परम श्रद्धेय लब्धतिपाद विभूति अनंत श्री विभूषित पूज्य गुरुदेव भगवान श्री रामानुजाचार्य, जिनकी पावन स्मृति में हम सभी लोग समवेत होकर आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। परम श्रद्धेय भगवान की मंगलमयी कथा का संपूर्ण विश्व में व्यापक प्रचार करने वाले परमादरणीय श्री ठाकुर जी, उनके चिरंजीवी श्री इंद्रेश जी, समस्त संतवृंद, भागवताचार्यगण, भगवत रस रसिक, भगवत प्रेम पथपथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीताराम चंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र श्रीधाम में विराजमान होकर आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा सुयोग भगवान की विशेष कृपा का फल है। भगवान जब किसी जीव पर विशेष कृपा करते हैं तो उस जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है, और इस कृपा के पीछे भी एक सूक्ष्म कारण होता है। ऐसे तो हम सभी लोग कहते हैं भगवान अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा वरुणालय, लेकिन भगवान अगर जीव पर अकारण ही करुणा करने लग जाए, अकारण उनकी कृपा बरसने लग जाए, तो भगवान के अंदर भी बड़े बड़े विद्वान दोष की आपत्ति उपस्थित कर देते हैं। ये बड़ी विडंबना है। कहते हैं बिना कारण की कृपा हो जाएगी तो कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति को न्याय शास्त्र में व्यभिचार कहा जाता है। वो लौकिक व्यभिचार के अर्थ में नहीं, उसको व्यभिचार कहते हैं। कारणाभावे कार्योत्पत्ति व्यभिचार, ये न्याय शास्त्र का सिद्धांत है। तो बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? बिना कारण के ठाकुर की कृपा हो तो बड़ी समस्या होगी। कहते क्या समस्या होगी? बोले भगवान के अंदर भी वैषम्य और नैर्घण्य नाम के दोष की आपत्ति उत्पन्न हो जाएगी। वेदांत में भी इस विषय में चर्चा की गई है। ब्रह्मसूत्र में श्री वेद व्यास जी ने यह विचार किया है कि भगवान बिना कारण के ही किसी को सुख दुख देने लग जाएं, कृपा करुणा कोप करने लग जाएं, तो भगवान के अंदर भी वैषम्य और नैर्घण्य नाम के दोष की उत्पत्ति होती है। वैषम्य माने विषमता और नैर्घण्य माने निर्दयता। जिसके अंदर घृणा न हो, घृणा माने दया। आजकल घृणा शब्द का अर्थ जुगुप्सा में त्याज्य वस्तु के अर्थ में किया जाता है। लोग कहते हैं हमको इनसे घृणा हो गई, हमको अमुक वस्तु से घृणा हो गई। लेकिन घृणा का अर्थ दया है कोश में, और शास्त्र में भी यत्र तत्र घृणा शब्द का दया अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। तो जिसके अंदर दया न हो वो व्यक्ति नैर्घण्य पुरुष होता है। तो विद्वानों ने कहा भगवान अगर अकारण कृपा करने लग जाएं, अकारण ही किसी जीव को भगवान कृपा करके साधन संपन्न बना दें अथवा उसे सन्मार्ग प्रदान कर दें, तो भगवान में भी वैषम्य नैर्घण्य नाम का दोष आ जाएगा कि जो व्यक्ति ने तप किया, साधन किया, उसको भी वही फल, और जिसने कुछ नहीं किया उसको भी वही फल, क्योंकि बिना कारण के ही कृपा बरसनी। फिर तो वही बात हो जाएगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अंधेर नगरी हो जाएगा, जो इतना तप किया, त्याग किया, साधना की, उसको भी वही कृपा मिल गई, और जिसने कुछ नहीं किया उस पर, क्योंकि बिना कारण के जब कृपा होगी तो कारण की तो कोई जरूरत नहीं, किसी पे भी हो सकती। तो कहते हैं भगवान में, परमात्मा में जो अखिल है प्रत्यनीक कल्याणिक तान, जिन परमात्मा का विशेषण है कि जिनमें कोई निंदित गुण नहीं है, उनमें भी नैर्घण्य और वैषम्य नाम के दोष की आपत्ति उपस्थित हो जाएगी। तब आचार्यों ने कहा नहीं नहीं, भगवान कृपा तो करते हैं लेकिन कृपा के पीछे भी भगवान स्वयं कारण का अन्वेषण कर लेते हैं, भगवान कारण ढूंढ लेते हैं। क्या कारण ढूंढते हैं? बोले जीव के द्वारा अनजान में, अज्ञान में न चाह करके जो सुकृत हो जाते हैं, जो पुण्य हो जाते हैं, जिनको हम जानते ही नहीं, उन्हीं पुण्यों का भगवान संचय करते रहते हैं और समय आने पर उसी पुण्य के फल स्वरूप उस जीव के ऊपर कृपा कर देते हैं और उसे भगवत प्राप्ति का मार्ग दे देते हैं। इसी को हमारे श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवत कृपा कटाक्ष अज्ञात सुकृतम भवति। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं अज्ञात सुकृतम भवति, हमारे आपके द्वारा जो अज्ञात सुकृत होता है, पुण्य होता है, जिसको हम पुण्य नहीं मानते, न उसका हम अपने जीवन में कहीं कोई उसकी आशा करते हैं कि इसका कोई फल हमें मिलेगा, लेकिन उन्हीं पुण्यों को कारण बना करके भगवान जीव के ऊपर कृपा कर देते, यही भगवान की अकारण कृपा है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे एक दृष्टांत। मंदिर में संत लोग भगवान की पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तब तक कोई चोर आया कुछ चोरी करने के लिए मंदिर में, चोरी करके भागने लगा और संजोग से भगवान के सामने ही वो गिर पड़ा फिसल कर। मुंह के बल जब धड़ाम से गिरा, वो तो गिर गया, भाग रहा था, लेकिन भगवान के सामने दंडवत, दंड के समान कोई गिर जाए तो क्या हो गया? बोले दंडवत हो गया, भगवान को प्रणाम हो गया। मंदिर में विराजमान भगवान ने भगवती श्री जी से कहा, देवी देखती हो कैसा सुंदर साष्टांग प्रणाम इसने किया है, ऐसा साष्टांग प्रणाम तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं करते, वो लोग भी सोचते हैं कहीं पीताम्बर हमारा गंदा न हो जाए, हाथ टेक करके किसी भी प्रकार से काम चला लेते। इसने तो ऐसा साष्टांग प्रणाम किया कि ऐसा प्रणाम तो कोई करता नहीं, यथावत दंडवत। तो श्री जी तो भगवान से भी ज्यादा करुणामयी हैं, उन्होंने कहा प्रभु इतना ही पुण्य इसने नहीं किया, इसने तो दो गुना पुण्य किया। कैसे? बोले जब ये गिरा तो सामने संत महात्मा खड़े थे, इसने तो संत महात्माओं को भी प्रणाम कर लिया, आपको भी प्रणाम किया, संतों को भी प्रणाम किया, दो गुना प्रणाम कर लिया। तो भगवान ने कहा इतना ही नहीं, इसने तो तीन गुना पुण्य किया। क्या किया? भगवान ने कहा कि जब ये गिरा तो जहां पर ये गिरा वहीं पर कुछ देर पहले गौ माता आई थी और गौ माता के चरण की रज वहां पर थी। जब मुख के बल ये गिरा तो वो मुख में वो रज चली गई, वो मिट्टी चली गई, इसने तो गोरज का पान कर लिया, इसलिए इसका पाप नष्ट हो गया, इसने तो तीन गुना पुण्य किया। भगवती श्री जी ने कहा नहीं नहीं, इसने इतना नहीं, इसने तो चार गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले जिस समय ये गिरा हल्ला गुल्ला सुन करके एक कुत्ता भौंकने लगा, उसी समय एक बिल्ली चूहे का शिकार करने जा रही थी, कुत्ते की आवाज सुनकर की बिल्ली भाग गई, एक प्राणी के प्राण की रक्षा इसने की, इसने तो चार गुना पुण्य किया। इस तरह से जीव के द्वारा होने वाले अज्ञात सुकृत का भगवान संचय करते हैं, यही भगवान की करुणा। और इन्हीं सुकृतों के परिणाम स्वरूप समय आने पर भगवान उसे सत्संग प्रदान करते। इसी बात को श्री वेदव्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकारो नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जब जीव के अनेक जन्मों के ऐसे सुकृत संचित होते हैं तो उन्हीं के फलस्वरूप भगवान उस जीव को सत्संग प्रदान करते, यही भगवान की कृपा है, यही भगवान की करुणा है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाइए,
जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब जब
होते हैं तब जीव को सत्संगति की प्राप्ति होती है, और सत्संग में आकर के ही, संत समागम प्राप्त करके ही हमें भगवान के चरणों तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त होता है, यहीं से शुरुआत होती है। हमारे स्त्री संप्रदाय के एक आचार्य श्री वरदाचार्य स्वामी जी महाराज हुए, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन किया है। प्रातः काल श्री वैष्णव को क्या अनुसंधान करना चाहिए, इस संदर्भ में श्री वरदाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, दो श्लोक उनके बड़े प्रमुख हैं, जो श्री वैष्णव लोग प्रतिदिन प्रातः काल उसका अनुसंधान करते हैं। सत्संगात भव निस्पृहो गुरुमुखात श्रीशं प्रपद्यात्ममान, प्रारब्धं परिभुज्य कर्म शकलं प्रक्षीण कर्मांतरः, न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लूनमायान्वयो हार्द्रानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वारात् बहिर्निर्गतः, मुक्तोर्चिरदिन पूर्व पक्ष षड्दुं माशाब्द वातां सुमद् ग्लौर्विद्युद् वरुणेन्द्र धात्रि महित सीमांत सिंध्वाप्लुतः, श्री वैकुंठ मुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः, सायुज्यम समवाप्य नंदत समह तेनैव धन्यः पुमान, प्रातर नित्यानुसंधेयम् परमार्थम मुमुक्षुभिः। आचार्य कहते हैं प्रातः काल मोक्ष चाहने वाले प्राणी को भगवत प्राप्ति की कामना रखने वाले प्राणी को इसका अनुसंधान करना चाहिए। क्या अनुसंधान है? बोले सत्संगात भव निष्प्रिय हो। सर्वप्रथम जब हम भगवान की कृपा से सत्संग को प्राप्त करते हैं तो सत्संग में आकर महापुरुषों की वाणी को सुन करके हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता, संसार से निष्प्रियता होती। सत्संगात भव निष्प्रिय हो। फिर बोले गुरु मुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। तब गुरु के द्वारा हम भगवान की शरणागति करते हैं। गुरु मुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान, और भगवान की शरणागति कर लेने पर हमारे संपूर्ण संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो कर्म प्रतिबंधक हैं उन कर्मों का नाश हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध का नाश नहीं होता। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता, इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रारब्ध को हम भोग लेते हैं। एक संत कहते थे, महाराज भगवान जब इतने करुणा वरुणालय हैं, सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो प्रारब्ध तो बहुत कम होता, उसको भी मिटा दें, क्या आपत्ति है? तो कहते हैं प्रारब्ध तो भगवान मिटा सकते हैं, लेकिन मिटाते नहीं हैं। क्यों? बोले प्रारब्ध मिटा देंगे तो बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि प्रारब्ध से ही हमारे जीवन में सब कुछ है। हम आप जीवित हैं तो ये प्रारब्ध है। जिस दिन प्रारब्ध खत्म होगा उसी दिन हम मर जाएंगे। तो कोई जीव भगवान की शरणागति करे और उसी क्षण भगवान उसके प्रारब्ध को भी समाप्त कर दें तो वो साष्टांग करेगा, फिर उठेगा नहीं, खत्म, मर जाएगा। क्यों? बोले प्रारब्ध खत्म तो जीवन खत्म। बोले तो आपत्ति क्या है? मरना तो एक दिन है, मर जाए, ठाकुर के शरण में मरे तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती? कहते बात तो ठीक है, उस जीव के लिए तो दिव्य है, लेकिन संसार के अज्ञानी प्राणियों में मैसेज क्या जाएगा? बोले जो भगवान के पास गया वो तो मरा। फिर तो संसार के अज्ञानी प्राणी कभी ठाकुर की शरण में आएंगे ही नहीं। ये भक्ति का मार्ग ही सदा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं प्रारब्ध तो तुम भोग लो, बाकी तुम्हारे जीवन के जो पूर्व के कर्म हैं उन कर्मों को मैं समाप्त कर दूंगा। तो प्रारब्ध तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो। और शरणागति के द्वारा, भगवत शरणागत होकर के व्यक्ति कर्मों से मुक्त होकर, माया से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पड़ता है। फिर जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आता है तो उसे योग और समाधि की जरूरत नहीं पड़ती। योग मार्ग में तो सुषुम्ना नाड़ी का वेधन करके जब आत्मा का उत्क्रमण होता है, उत्क्रांति गत्यागति नाम वेदांत में श्री वेद व्यास जी ने इसका विश्लेषण किया है कि जीव का जो उत्क्रमण होता है सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करके, तब उस जीव को परम गति की प्राप्ति होती है। उसकी अपेक्षा वैष्णव को नहीं होती। भगवत शरणागत के लिए सुषुम्ना नाड़ी से प्राण का उत्क्रमण हो, आत्मा का उत्क्रमण हो, ये आवश्यक नहीं होता। क्यों? बोले हृदय में विराजमान जो भगवान है वो स्वयं भगवान उस जीवात्मा को लेकर के उस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हार्द्रानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वाराद बहिर्निर्गत। और फिर वो जीवात्मा जब चलता है तो रास्ते में जितने लोक पड़ते हैं उन समस्त लोकों के देवता उस जीवात्मा का स्वागत करते हैं। फिर संपूर्ण प्रकृति को पार करके जब वैकुंठ की सीमा पर पहुंचता है तो वहां पर विरजा नाम की एक नदी प्राप्त होती है। उस विरजा नदी में भगवान उस जीव को स्नान कराते हैं। विरजा स्नान करने के बाद जब वह नदी को पार करके उस पार पहुंचता है तो भगवान के दिव्य त्रिपाद विभूति का उसे दर्शन होता है। जिसको वैकुंठ कहते उसी को साकेत कहते हैं, उसी को गोलोक कहते हैं। भक्त की जैसी भावना होती है तद भावना के अनुकूल भगवान के उस लोक का प्रकाश होता है। लोक तो वही है, लेकिन अगर वो कन्हैया का उपासक है तो उसको वैकुंठ गोलोक दिखेगा। राम जी में निष्ठा है तो वो साकेत दिखे, नारायण में निष्ठा है तो वैकुंठ का दर्शन होता है। क्योंकि जैसे भगवान अनेक रूप रूपाय, उसी तरह भगवान का दिव्य धाम भी चिन्मय है, ज्ञानमय, वो कोई जड़ नहीं है। इसीलिए आचार्य कहते हैं अजड़म, वो अजड़ है। उसी को शास्त्रों में त्रिपाद विभूति कहा, वेद में पुरुष सूक्त में वर्णन करते हैं त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादो सेहा भवत पुनः। तो भगवान की जो विभूति है संपूर्ण भगवान की विभूति के दो वर्ग हैं। एक वर्ग है त्रिपाद विभूति, त्रिपाद माने तीन पाद, एक रुपए में 75 पैसे, तीन हिस्सा। तो तीन हिस्से में तो भगवान का वैकुंठ है, और एक हिस्सा जो 25% है उसमें अनंत अनंत सृष्टि है, ब्रह्मलोक, शिवलोक, अमुक लोक, अमुक लोक, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, सा 25% में पादो सेहा भवत पुनः, एक पाद में संपूर्ण सृष्टि और त्रिपाद ऊर्ध्व दैत पुरुषा, तीन पाद में भगवान का निज धाम। तो उस त्रिपाद विभूति को जब जीव प्राप्त कर लेता है तो परम धन्य हो जाता है। वहां तक उस त्रिपाद विभूति तक पहुंचने का जो सुंदर क्रम है, इस क्रम का प्रतिदिन वैष्णव को चिंतन करना चाहिए प्रातः काल उठ करके। और इस चिंतन का प्रारंभ यहीं से होता है कि सत्संगात भव निस्पृहो, जब हम सत्संग में आते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं, तभी ये यात्रा हमारी प्रारंभ होती है। और ये संजोग तभी बनता है जब हम भगवान के कृपा पात्र बनते हैं, ठाकुर की कृपा हमारे ऊपर होती है। बंधुओं, परम सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य महापुरुषों की सन्निधि में बैठकर भगवत चर्चा करने का हम सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं तो अपने को भी धन्य और कृतकृत्य मानता हूं कि ऐसी दिव्य विभूतियों की सन्निधि में बैठकर इस तुच्छ दास को भगवत चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री रघुनंदन की ये मंगलमयी कथा, भगवान का जन्म कर्म, भगवान की लीलाएं हमें जन्म कर्म के बंधन से मुक्त करने वाली। हम जन्म कर्म के बंधन में क्यों पड़े हैं? बोले इसीलिए पड़े हैं कि हम दिन भर जन्म कर्म की ही चर्चा करते हैं। जो हम चर्चा करेंगे, जो हम सोचेंगे, वही हो जाएंगे। ये सिद्धांत। 24 घंटे हम संसार के ही जन्म कर्म की चर्चा करते हैं। जिससे मिलते हैं तो वो अपनी राम कहानी उसको सुनाता है, वो अपनी राम कहानी उसको सुनाता है। हम एक दूसरे के जन्म कर्म को ही सुनते और सुनाते हैं। इसका परिणाम बोले संसार के उसी जन्म कर्म के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरेशयनम। बोले महाराज, ये जन्म कर्म को सुनने और सुनाने की आदत पड़ गई है हमारी, अब क्या करें? तो ठाकुर कहते हैं, अगर जन्म कर्म को सुनने सुनाने की तुमको आदत पड़ गई है तो संसार के प्राणियों के जन्म कर्म को सुनना सुनाना छोड़ दो, मेरे जन्म कर्म को सुनो और सुनाओ। बोले महाराज, आपके जन्म कर्म को सुनेंगे सुनाएंगे तो क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। संसार के प्राणियों का जन्म कर्म तो उनके पूर्वकृत कर्मों से जुड़ा है, लेकिन भगवान का जन्म कर्म तो दिव्य है। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः मेरे जन्म कर्म को समझता है और सुनता है, श्रवण करता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर संसार के इस चक्र में नहीं पड़ता है। तो जन्म कर्म के बंधन से मुक्त होने का यही उपाय है कि हम ठाकुर के जन्म कर्म का वर्णन करें, ठाकुर जी के जन्म कर्म का, उनकी दिव्य लीलाओं का हम चिंतन करें। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने, वीतरागियों ने भी भगवान के जन्म कर्म का ही वर्णन किया। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता, नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। बड़े बड़े वीतरागी महापुरुष जो विधि और निषेध से भी ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए न विधि कोई है न निषेध है, अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न च क्रमः, जो भगवान के परम भक्त हो गए, परम ज्ञानी, उनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं, ऐसे महापुरुष भी भगवान के चरित्र का अनुशीलन करते, भगवान के चरित्र का चिंतन करते। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरिगुण सुनत अघान।